ओम शांति। अभी हम जीवन से संबंधित जो अन्य एस्पेक्ट है, विशेषकर हमारी पर्सनल लाइफ है चाहे हमारी फैमिली लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, उनसे रिलेटेड टॉपिक पर अभी हम देखेंगे। इस सत्र का टॉपिक है मैनेजिंग द चेंज। हमारे आसपास और हमारे स्वयं के भीतर जो परिवर्तन होते जा रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करें, बदलती परिस्थितियों में कैसे स्वयं को मैनेज करें। हम स्वयं सभी साक्षी और अनुभवी हैं कि संसार कितनी तेजी के साथ बदल रहा है। एक वर्ष के अंदर व्यक्ति के आसपास भी बहुत कुछ बदल जाता है और व्यक्ति के भीतर भी काफी परिवर्तन आता है। हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन विज्ञान के विकास के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण इंडस्ट्री के अंदर और उसके प्रभाव से मानव समुदाय के ऊपर काफी परिवर्तन आ रहा है। आज से 50-100 वर्ष पूर्व के जीवन को अगर हम देखें, बहुत कम साधनों में, कुदरत की गोद में मनुष्य अपना नैसर्गिक जीवन जीता था और एक सहज चिंतन से उनका जीवन चलता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान बॉडी कॉन्शियस होता जाता है, उनकी सांसारिक भौतिक दैहिक कामनाएं भी बढ़ती जाती हैं और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए जो प्रवृत्ति हम करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कितने विकास हुए हैं। अब देखिए, बेसिकली कुदरत ने हमें 5 तत्व दिए हैं, प्रकृति के मूल 5 तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। इन 5 तत्वों से मनुष्य ने कितने पदार्थ बनाए हैं। एक छोटी सी पील सुई से लेकर बड़े से बड़ी मशीन, कितने प्रकार की आज हम उपलब्ध करते जा रहे हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के आधार पर। और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना है कि प्रति वर्ष सैकड़ों इंडस्ट्री बंद होती है, नई नई डेवलप होती है। आज जो चीज निकली है 10 दिन के अंदर वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है। एक कंप्यूटर अभी निकला है और कुछ दिनों में इससे और रिफाइन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर के बनता है और इस प्रकार चीजों की भरमार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 10 साल के अंदर ही आप देखिए, ये लेसर, सोलार, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सारी चीजों से कितना विकास हो रहा है और कितनी नई 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 चीजें साधन बढ़ते जा रहे हैं। तो जितना तेजी से भौतिक रूप से संसार बदल रहा है, उसी के अनुरूप व्यक्ति का आंतरिक विकास इतनी तेजी से नहीं हो रहा है। और इसलिए इस भौतिक विकास के साथ अपने को सेट करने में उसके सामने काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। इवन हम अपने सामाजिक जीवन के अंदर देखें तो अपने फैमिली लाइफ के अंदर, अपने रिश्तों नातों में भी काफी बदलाव आए हैं। जहां एक तरफ हम कहते हैं कि विज्ञान के विकास के साथ साथ ये विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है, इतना नजदीक हम एक दो के आ गए हैं, यहां बैठे हुए दुनिया के दूसरे कोने में जो घटनाएं बनती है, जो विकास होते हैं, जो बातें बनती हैं, उसी क्षण हम यहाँ बैठे हुए वाकिफ हो जाते। कम्युनिकेशन के इतने साधन हैं कि हमें अपने घर बैठे गांव में भी सारी दुनिया का समाचार, इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन दूसरी ओर मानव के दिलों की जो नजदीकता थी वो और दूरी हो रही, दुनिया सिमट रही है। साधन और सिस्टम्स नए नए जो बने हैं, इससे हम एक दो के वाकिफ हो गए हैं, नजदीक जुड़ गए हैं, लेकिन व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध और परिवार में जो दिल की समीपता है वो कम हो रही है। और इसलिए एक कमरे में एक साथ रहने वाले भी आपस में एक दो के समीप नहीं हैं। हम देखते हैं कि परिवार टूटते जा रहे, लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते हैं, घर खाली रहते हैं, नुक्कड़ और गलियों में भीड़ रहती, क्योंकि आपस में जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक दो से प्यार चाहिए, एक दो के साथ एडजस्टमेंट करने की शक्ति चाहिए, वो आज नहीं है। इसलिए एक दो को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और परिणाम स्वरूप रिश्ते में दूरी आ रही है, परिवार टूट रहे हैं। और घर परिवार के अंदर जब वो प्यार और सामंजस्य का वातावरण नहीं है तो नेचुरली व्यक्ति घर में रहना पसंद नहीं करता है, वो बाहर गली मोहल्ले में ही घूमते रहते। तो एक तरफ सोसाइटी फैमिली लाइफ की ये सिचुएशन है, ओवरऑल वर्ल्ड की स्थिति हम देखते हैं बहुत तेजी से पॉलिटिकल चेंज आते हैं। आज हर देश की स्थिति को देखिए, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है एक देश को दूसरे देश के साथ, और इंट्रानेशनल प्रॉब्लम भी है, हर देश के भीतर अपने अपने भी प्रॉब्लम्स है। चारों ओर से अगर हम अपने देश को ही साक्षी होकर के देखते हैं तो चारों ओर से देश सुलग रहा है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन भी ये है। दूसरी ओर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जा रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, यातायात के वाहन बढ़ रहे हैं, इन सब के कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंस उत्पन्न होता है और पर्यावरण के भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसके फल स्वरूप अचानक नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं आ रही, कहीं कुछ कहीं कुछ। कभी बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक हो जाते हैं तो कहीं फ्लड आ जाते हैं, कहीं अकाल पड़ते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी हम देखते हैं कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है और एक प्राकृतिक जो समाज की, संसार की स्थिति है, वो भी व्यवस्थित नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों ओर हलचल की एक स्थिति। कल शिलुबेन जी ने बताया था कि हम एक ऐसे एज से पास हो रहे हैं जिसमें कंपटीशन है, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ का क्षेत्र हो, कंपटीशन बढ़ती जा रही। हम अपने जीवन का काफी समय अगर देखें तो या तो कंपटीशन में या कंपैरिजन में हमारा काफी समय और एनर्जी खर्च हो। हम कुछ भी खाते हैं, पहनते हैं, रहते हैं, चलते हैं, जो साधन सुविधा और व्यवस्था हमारे पास है, कांस्टेंट एक कंपैरिजन का नेचर हमारा रहता है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई आप दुखी क्यों हैं? तो उसने कहा कि मैं दुखी इसलिए हूं कि मेरा पड़ोसी सुखी क्यों है, उसके कारण मैं दुखी, क्योंकि हम कंपैरिजन करते, उनके पास ये है तो हमारे पास ये होना चाहिए, उनके यहाँ नई गाड़ी आई है तो हमारे यहाँ नई गाड़ी आनी चाहिए। कहते हैं ना, आपकी गाड़ी पुरानी कब हो जाती है? जब दूसरे के पास नई आती है। तो हमारी गाड़ी पुरानी हो जाती है। तो एक कंपैरिजन की नेचर, व्यक्ति अपने स्वमान से नहीं जी रहा, अपनी वास्तविकता और अपने विवेक से नहीं जी रहा, लेकिन एक कंपैरिजन की नेचर, इनके पास क्या है, हमारे पास क्या है, लोग क्या कहेंगे, मैं ये कपड़े पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे, माने हम अपने विवेक से नहीं जी रहे। तो इस प्रकार हम एक कंपटीशन के एज से पास हो रहे हैं और उसके फल स्वरूप भय है, चिंता है, अनिश्चितता जीवन में है, कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं है, और इसलिए हर इंसान अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। और इसलिए बताया कल आपको कि ये एज ऑफ पैनिक है, अफरा तफरी का ये युग बन गया, और उसी के रिजल्ट में स्ट्रेस इंसान को बढ़ता जा रहा है, कोई डिप्रेशन में जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, किसी को तनाव हो जाता है, और जब मन की स्थिति अस्वस्थ बन जाती है तो तन भी रोगों से घिर जाता है। कहते हैं भी चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप गुण ज्ञान। हमारे तन मन की बीमारियों का यही कारण है कि मानसिक स्थिति हमारी जितनी स्वस्थ और संतुलित होनी चाहिए उतनी नहीं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां जो है वो इतना मन पर प्रेशर लाती है कि व्यक्ति और आंतरिक शक्ति है नहीं उसको रेजिस्ट करने की, इसलिए टेंशन में व्यक्ति अपने आप को फील करता है। आज एक छोटा बच्चा भी कहता है कि मम्मी मुझे बहुत टेंशन है, हमारी परीक्षा आई है। माँ बाप को भी टेंशन है, बच्चा पैदा होने वाला है और तब से ही टेंशन है कि भाई किस स्कूल में उसको एडमिशन दिलाएंगे। माना हर परिस्थिति और संसार का हर सेटअप जो है वो आज अव्यवस्थित हो गया है, चरमरा गया है। चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो न्याय जुडिशरी का फील्ड हो, चाहे वो कल्चर का फील्ड, हम अपनी मूल संस्कृति को भूल गए हैं और पाश्चिमात्य देशों की संस्कृति के प्रभाव में हमारा जीवन भौतिकवादी और भोगवादी बनता जा रहा है। तो इन सब परिस्थितियों में, क्योंकि परिस्थितियां बाहर से आ रही, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, समाज से आ रही है, व्यक्तियों से आ रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से आ रही है, प्रकृति से आ रही है, परिस्थितियां जो है वो बाहर से आ रही है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। इसलिए परिस्थितियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमारा जीवन पास हो रहा है तो आवश्यकता है कि हम अपने आप को मैनेज करने की वो कला सीख लें, ताकि इन हलचल की परिस्थिति में भी हम स्वयं को मैनेज कर सकें। हम अपनी मानसिक स्थिति को भी अगर देखें तो आज हमारे स्वयं के ऊपर भी, ये है हमारा अपना सेल्फ, स्वयं के ऊपर भी एक तो हमारे मन की स्थिति पर पास्ट की मेमोरीज का प्रेशर होता है। अगर आप अपने मन की स्थिति को ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि काफी समय हम बीती हुई बातों के चिंतन में रहते, भी ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये नहीं होता तो ये नहीं होता, बीती हुई बातों के चिंतन में मन लगा रहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फ्यूचर की बातों का चिंता हवे रहती, भविष्य की चिंताएं मन पर प्रेशर डाले रहती, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इस बच्चे का क्या करेंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे, इनकी शादी कैसे करेंगे, घर क्या क्या होगा, भविष्य की चिंताएं। बहुत कम समय हम वर्तमान में रहते हैं, या तो बीती हुई बातों की चिंतन में है या भविष्य की चिंता हमें लगी हुई है। प्रेजेंट में भी एक है एक्सटर्नल प्रेशर, वर्तमान में जो संसार की स्थिति है, घटनाएं घटती है, जो बातें होती है, उनका एक प्रेशर, और दूसरा है इंटरनल प्रेशर। वो कौन सा है? व्यक्ति स्वयं भी ऐसे नेगेटिव चिंतन में रहती है, बाहर के प्रेशर तो है लेकिन खुद के अंदर भी नेगेटिव चिंतन है, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, आजकल मुझे रोज बुखार आ रहा है, कहीं टाइफाइड ना हो जाए, ये ना हो जाए, बच्चा कहीं गया है, समय से नहीं आया, कुछ हो तो नहीं गया है ना? अपना नेगेटिव चिंतन हमारी इंटरनल शक्ति को खत्म कर रहा है। तो टोटल एक प्रेशर की स्थिति में हमारी अवस्था है। बाह्य संसार की जो चारों ओर की स्थिति हम देखते हैं दिन प्रतिदिन, चोरी, गुनाह, अपराध, भ्रष्टाचार, ये बढ़ते ही जा रहे। जैसे कल आपको बताया कि बैड न्यूज इज न्यूज, अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, आपस में चर्चा का विषय होता है, वो यही होता है। और चारों ओर जब पापाचार, भ्रष्टाचार, अनीति, दादागिरी, ये सब चीजें बढ़ती है, तो इन सब चीजों को देखकर इंसान खुद भी क्या सोचता है, खुद भी क्या सोचता है, आपके साथी, आपके ऊपर के, आपके आसपास के सैकड़ों लोगों को जब आप देखते हैं कि हर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, पापाचार कर रहा है, काम चोरी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो इन सब को देखकर व्यक्ति खुद भी क्या सोचता है, हाँ हम भी ऐसा करेंगे, जब सब ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें। लोग दादागिरी से देखो अपना काम निकलवा लेते हैं, बेईमानी से आगे बढ़ जाते हैं, अनीति से कमा लेते हैं, तो हम भी करेंगे। तो धीरे धीरे हम अपने वैल्यूज को छोड़ते जाते, भाई छोड़ो सत्य को, सारे ही हेरा फेरी और झूठ से काम कर रहे, छोड़ो ईमानदारी को, बेईमानी को हम अपना रहे, छोड़ो नम्रता को, दादागिरी को अपनाते जा रहे। तो धीरे धीरे हम अपने वैल्यूज को छोड़ते जा रहे हैं और उनके स्थान पर हम कमजोरियों को, अवगुणों को, बुराइयों को, विकारों को अपने जीवन के अंदर स्थान देते जा रहे हैं। अब ऐसी नाजुक परिस्थिति में, ऐसी हलचल वाली परिस्थिति में, जहां जीवन का कोई एक दिन ऐसा नहीं, कोई विषम परिस्थितियां ना आई हो, कोई ऐसी घटनाएं ना घटी हो, ऐसी जीवन की स्थिति में अगर व्यक्ति अंदर से भी खोखला हो जाए, कमजोर हो जाए, और उस कमजोरी के आधार पर वो अपने जीवन को चलाना चाहे, तो वो कैसे चला सके? तो आवश्यकता है कि अब हमें खुद को मैनेज करने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारा अपने आप पर तो कंट्रोल है ना। चलो भाई, दूसरों पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, परिस्थितियों को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को तो ठीक कर सकते। तो सेल्फ, खुद को मैनेज करना, उसके लिए हमें किन किन बातों को जानने की जरूरत है? तो सबसे पहले हमें ये अब समझ लेना चाहिए, देयर इज नो टर्निंग बैक। दुनिया दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, बल भौतिक विकास है, लेकिन व्यक्ति अपने आंतरिक, जो नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्य है, उसको गंवाता जा रहा है। हमें समझना चाहिए, थिंग्स विल नॉट गो बैक टू द स्टेबल पैटर्न्स ऑफ द पास्ट। भूतकाल की जो स्थिर गतिशील दुनिया की स्थिति थी, उसमें फिर ये संसार नहीं जाने वाला। दिन प्रतिदिन संसार का ये नियम है, हर चीज नई से पुरानी होती है, हम अपनी शक्ति गंवाते जाते हैं। बचपन से लेके अब तक के आयु में आप देखिए कि हमारी फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है, हम अपनी शक्ति को लॉस करते जाते हैं। एंड वी विल सी ए वर्ल्ड, हम देखते जा रहे हैं विश्व की जो स्थिति है, एक तो ग्लोबल कंपटीशन। जैसे जैसे विश्व एक विलेज बन रहा है और जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो भी भाई बहने इंडस्ट्री से बड़ी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि जब से ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ है, काफी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे। तो एक ग्लोबल कंपटीशन का एटमॉस्फेयर। दूसरी ओर रेवोल्यूशनरी न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजी निकलती जा रही है और इसलिए जो पुरानी है वो टूट रही है। मैंने बताया ना, आज जो चीज है 10 दिन में वो पुरानी हो जाती है। डिसरप्टिव सोशल ट्रेडिशन, समाज की जो सामाजिक स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, नीचे उतरती जा रही है। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है जीवन में, इसलिए सुरक्षितता का अनुभव नहीं है। व्यक्ति सतत भय, चिंता और तनाव में, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जीवन में उलझने बढ़ रही है। जो सरल, सादा, सहज जीवन था वो आज अनेक उलझन से, हलचलों से भरा हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है व्यक्ति के माइंड में, उनकी पर्सनालिटी में, उनके रिलेशन में और उनके कार्यक्षेत्र में। पहले इंसान बहुत सरल नेचर के थे, सीधे सादे थे। आज हम देखते हैं हमारी अपनी आंतरिक मनोस्थिति भी, आज सुबह आपने देखा है कि हमारी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, लेकिन हमारी इन 3 शक्तियों में भी हार्मनी नहीं। व्यक्ति सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, उसके विचार, वाणी और व्यवहार में तालमेल नहीं, इसलिए व्यक्ति भरोसे के पात्र नहीं रहा है। हमारी अपनी एनर्जीज में तालमेल नहीं, हमारे अपने रिलेशन में सरलता नहीं, हमारे अपने कार्य व्यवहार में सरलता नहीं। बात बात में बदल जाना, हेराफेरी कर देना, झूठ बोल लेना, प्रपंच कर देना, स्वार्थ से पेश आना, तो एक सरल व्यक्तित्व मनुष्य का नहीं रहा है और उसके कारण बहुत तेजी से परिवर्तन समाज के अंदर आ रहे हैं। इसलिए वी मस्ट फाइंड न्यू बैरिंग्स, हमें ऐसे नए आधार ढूंढने होंगे, ऐसी नई योग्यताएं अपने में डेवलप करनी होंगी, हमें ऐसी क्षमताएं अपने आप में लानी होंगी ताकि हम इन परिस्थितियों में अपने आप को सरलता से चला सके। और यहां बताया है कि लोग जीवन के अंदर वही सफल हुए हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र है, जिन्हें ये स्पष्टता है कि हम कौन हैं, क्यों इस संसार में आए हैं, किस लिए आए हैं, हमें कहां जाना है। मान लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको ये क्लैरिटी हो, क्योंकि लोग वही सफल हुए हैं जिनके जीवन के अंदर ये सेंस थी। चाहे महात्मा गांधी जी को देखिए, विवेकानंद को देखिए, समाज के कोई भी क्षेत्र के महान और सफल व्यक्तियों को देखेंगे तो उनके जीवन के अंदर आप पाएंगे कि उनके अंदर ये सेंस थी कि वेयर दे आर हेडेड, वे किस लिए वहां हैं, क्या उनका लक्ष्य है एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर, वो किस लिए यहाँ इस स्थान पर, इस संस्था में, इस जीवन के अंदर है। ओल्ड रेफरेंस पॉइंट्स फॉल अवे, अब पुरानी दकियानुसी बातों को लेकर, पुरानी रफ्तार से हम वर्तमान की जिंदगी नहीं जी सकते हैं। हर एक अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे नई नई चीजें आती हैं, हमें अपने आप को भी इतना अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। There is need to find new bearings to steer through the turbulence। इस हलचल की स्थिति से पार होने के लिए हमें न्यू बैरिंग्स ढूंढने होंगे और वो कौन से हैं, डिफरेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड। उसके लिए ऐसी योग्यताएं, ऐसी कलाएं और ऐसी क्षमताओं की आवश्यकता है जिसको हमें जीवन में डेवलप करना होगा। न्यू एंड डिफरेंट कैपेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी इफेक्टिव इन दिस एनवायरमेंट। आज एक कंपनी दूसरी कंपनी की तुलना में अगर अपनी प्रोडक्शन थोड़ी भी नई और लेटेस्ट नहीं करेगा तो वो अपने मार्केट को लूज कर देता है। हम भी अगर अपनी समझ, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी कलाओं को अगर डेवलप नहीं करते हैं तो आज जो एडवांस रिफाइन सिस्टम्स निकले हैं उसमें अपने आप को नहीं चला सकते हैं। और वो स्किल्स कौन से, दे आर नॉट स्किल्स लर्न एट स्कूल, स्कूल कॉलेज में जो सिखाए जा रहे हैं वो एजुकेशन और वो स्किल्स की बात नहीं है, लेकिन दे आर सेल्फ मैनेजिंग स्किल्स लाइक इंट्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, फोकस, टॉलरेंस एंड स्टिलनेस एक्सेट्रा। ये आंतरिक योग्यताओं की बात है जो हमें अपने आप में विकसित करने की आवश्यकता है। आज वो कला की बात हम नहीं कर रहे हैं जो स्कूल कॉलेज में सिखाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे गुण और शक्तियों को, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के ग्रुप्स आते हैं इस ज्ञान और योग की ट्रेनिंग लेने के लिए। कुछ कॉमन प्रॉब्लम की बात हर कोई बताता है, चाहे परिवार में भी वो चीज आप महसूस करते हैं, कोई सामाजिक काम करने जाते हैं उसमें भी महसूस करते हैं, जहां भी संगठित रूप से काम करना है हम महसूस करते हैं। एक बात तो ये है कि आज लेक ऑफ टीम स्पिरिट, लोग जो है वो आपस में मिलके काम नहीं कर पाते। इंडिविजुअल अपने आप में बहुत अच्छे हैं, पर जहां 2, 4, 10, 50, 100, 500 को मिलके काम करना है वो मिलके नहीं चल पाते। आपस में ईगो टकराते हैं, ईगो क्लैशिश होते हैं और उसके कारण वो मिलके काम नहीं कर पाते। एक सर्वे के अनुसार कहा जाता है कि एक भारतीय के अंदर 3 जैपनीज जितनी कार्य करने की क्षमता है। जापान को तो जानते हैं ना, वो देश कैसे टूट गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और अपनी मेहनत से आगे आया। ऐसे जापनीज लोगों की तुलना में एक भारतीय के अंदर 3 जैपनीज जितनी कार्य करने की क्षमता। लेकिन उस सर्वे में बताया कि जब दो भारतीय आपस में मिलते हैं तो केवल एक जैपनीज जितना काम कर पाती थी, और जब तीन भारतीय मिलते हैं तब तो काम ही नहीं होता है, क्योंकि लेक ऑफ टीम स्पिरिट, मिलके काम नहीं कर पाते, आपस में एक दो के कमजोरियों को देखना, एक दो के पांव खींचना और गिराने की कोशिश शुरू हो जाती। दूसरा एक और प्रॉब्लम, लेक ऑफ पॉजिटिव विजन, एक दो के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जो होना चाहिए, विशेषताओं को देखना चाहिए, वो नहीं। अक्सर हमारे चित्त पर एक दो की कमजोरियां ज्यादा आती। हम जो आपस में मिलते हैं, चाहे परिवार में रहते हैं चाहे कार्य क्षेत्र में हैं, हमें एक दो की कमजोरी का ज्यादा पता है। यहाँ एक ही फैमिली के लोग आए हैं, जो एक ही परिवार के पति पत्नी आए हो, माँ बाप भाई बहन आए हो, ऐसे कोई है? हाँ, आप खड़े हो जाइए। ये एक ही फैमिली, एक कंपनी के एक ही डिपार्टमेंट में साथ काम करने वाले हैं, हाँ, एक ही कंपनी के और एक साथ एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले। हाँ, आप अपना परिचय दें।
मैं,
आपका नाम क्या है, कहाँ से आए?
हाँ, मेरा नाम विनय कुमार है, मैं बॉम्बे से आया हूँ, बीआरसी में काम करता हूँ, साइंटिफिक ऑफिसर हूँ।
और बहन जी बताएं।
मेरा नाम इंदु बाला है, मैं बॉम्बे से आई हूँ, मैं एक टीचर हूँ।
और एक ही फैमिली, पति पत्नी,
पति पत्नी हम।
अब हम चाहें आप बताएंगे भाई साहब की क्या विशेषता, बहन जी बताएं।
इनमें क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, और मतलब आदमी को, सामने वाले को देख के तुरंत पहचान लेते हैं कि क्या उसके मन में चल रहा होगा।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई साहब में परखने की शक्ति है और अपने आप में आत्मविश्वास।
हाँ
भाई को, आप बहन जी की विशेषता बताएं।
घर के काम करने में मैं इन्हें काफी निपुण पाता हूँ और घर को बहुत अच्छे तरह से चलाती हैं।
बहुत अच्छा, एक दो की विशेषता हमारी बुद्धि में। इधर दीजिए अपना परिचय दें।
मेरा नाम विनोद पंचाल है, आई एम फ्रॉम गोडरेज, मैं डिप्यूटी जनरल मैनेजर रेफ्रिजरेटर प्लांट का हूँ, मेरे साथ में उपाध्याय जी है।
आप बताएंगे इनकी क्या विशेषता है, आप बताएं। नहीं, आप हाँ।
हमारे साथ उपाध्याय साहब है, वो पैकिंग डिपार्टमेंट रेफ्रिजरेटर का वहाँ पे काम करते हैं। इनमें काफी सेल्फ कॉन्फिडेंस है और इनके साथ उनकी टीम अच्छी तरह से काम करती है, जो वर्कर को वो चला रहे हैं, जो डिपार्टमेंट चल रहा है वो काफी अच्छी तरह चलता है। उनका जो उसका प्रभाव जो पड़ रहा है डिपार्टमेंट में, द लीडरशिप क्वालिटी इनके पास काफी अच्छी है।
बहुत भाई साहब की विशेषता बताइए आप।
मेरा नाम इंद्रधन उपाध्याय है, मैं गुजरात से हूँ। विनोद साहब मेरे बॉस है, इमीडिएट बॉस है। उसकी खास विशेषता ये है, उसे डिटर्मिनेशन बहुत है और जो काम हाथ में लेते हैं कैसे भी करके वो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करने के बाद में देखते हैं कि पूरा हुआ कि नहीं।
बहुत
उसकी खास विशेषता है।
बहुत
थैंक यू।
जैसे ही आपने एक दो की विशेषता बताई, आपके मन में क्या आया? जैसे ही आपने उनकी विशेषताओं का वर्णन किया तो आपको उनके लिए मन में कौन सी फीलिंग्स आई?
मुझे उसके बारे में ज्यादा अपनापन महसूस हुआ,
अपना
कि मेरे अपने ही है, उसके साथ में खुले मन से बात कर सकता हूँ, कह सकता हूँ और उससे ज्यादा मैं इक्विपमेंट दे रहा हूँ।
तो जब हम विशेषता थैंक यू जैसे ही हम एक दो की विशेषता देखते हैं और विशेषताओं का वर्णन करते हैं तो हमारे मन में एक दो के लिए कौन सी फीलिंग आती है? लव, रिस्पेक्ट, है ना? एक दो के लिए प्यार, सम्मान की भावना आती है। और वहीं अगर हम एक दो की कमजोरी देखते हैं, अवगुण देखते हैं, गलतियां देखते हैं तो क्या फीलिंग आएगी? हम एक दो से दूर होते हैं, हमें घृणा आएगी, नफरत होगी। और ये है फलस्वरूप कि हम आपस में मिलके चल नहीं पाते। एक और है कॉमन प्रॉब्लम, वो है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप, आपस में पहले परिवार के लोग संध्या के समय आपस में बैठते थे, मिलते थे, भजन प्रार्थना करते थे और एक दो के साथ सारे दिन की बात शेयर करते थे। फैमिली में एक कैरिंग एंड शेयरिंग की बात चलती और उसके कारण परिवार अपना लगता था। लेकिन जब से टीवी कल्चर आया है, हाँ, आपस में कैरिंग शेयरिंग उड़ गया है। हर कोई घर आकर टीवी के सामने बैठ जाता है। जो एक दो से अपनी फीलिंग वेंटिलेट करते थे, अंदर की बातें भावनाएं, वो एक कहां निकालने का अब कोई स्थान नहीं रहा, समय नहीं रहा। और जब से अनेक चैनल बने हैं, जो टीवी सबको एक साथ बिठाता था, आज उसमें भी अनेक चैनल हुए हैं। बच्चे कहेंगे हम ये देखना चाहते हैं, बहन जी कहेगी मैं ये देखना चाहती हूँ, भाई साहब कहेंगे मुझे ये देखना है, वो यूनाइट करने के बजाय और ही डिवाइड कर रहा है। इसलिए अनेक संबंधों के बीच रहते हुए भी आज इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है, उसे अपना कोई नजर नहीं आता। एक बच्चे की बात मैं आपको बताऊं, बहुत ही संपन्न परिवार का था, पिताजी भी बहुत बड़े उद्योगपति थे, माँ भी अच्छे संस्थाओं से जुड़ी हुई सोशल वर्कर थी। बच्चे के खाने पीने, पहनने पढ़ने की सब सुविधाएं माँ बाप ने करके दी थी, लेकिन ये सब कुछ होते हुए बच्चा हमेशा उदास रहता। एक दिन उसने कहा कि मैं इस घर में रहता हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता है कि पिताजी कहाँ गए हैं, मम्मी कहाँ गई, मुझे कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, मुझे ये घर ही नहीं लग रहा। तो उसके पिताजी ने कहा ठीक है, कल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी। दूसरे दिन से उनके कमरे पर एक शीट लगा दी जाती थी कि आज पिताजी इस मीटिंग में जाएंगे, माताजी इस प्रोग्राम में जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलने लगी। फिर भी बच्चा उदास, क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए था? वो प्यार, वो अपनापन, उसे केवल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी लेकिन उसे वो वार्म, वो लव, वो चाहिए। तो आपस में हमारा कम्युनिकेशन ना होने के कारण काफी मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होती है और व्यक्ति एक दो से दूर होते। दूसरी एक बात आप देखते हैं कि आज लोग इवन घर में भी, आप देखिए घर में भी और ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग काम करते हैं लेकिन सेंस ऑफ लैक ऑफ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दे, जिम्मेवारी की सभानता के साथ काम नहीं करते। लोग आते हैं, नौकरी करते हैं, पेमेंट लेते हैं, लेकिन जवाबदारी से काम नहीं करते। जैपनीज के लिए कहा जाता है कि वे कंपनी से में काम नहीं करते हैं, वे कंपनी से मैरिड होते, जीवन जोड़ते। आज हम निमित्त मात्र नौकरी करते हैं अपने अधिकार और वेतन लेने के लिए, जिम्मेवारी के साथ काम नहीं करते। लैक ऑफ मोटिवेशन, दिल से काम नहीं करते, अंतर से जो उमंग उत्साह चाहिए वो नहीं, ऐसे ही काम चला, ऊपर ऊपर से कर ली, थोड़ा बहुत कर ली। आज चाहे घर के बड़े अपने युवा पीढ़ी से तंग है या कार्यक्षेत्र में, लोग दिल से काम नहीं करते, उमंग उत्साह नहीं, उनकी रुचियां कहीं और है, उनके इंटरेस्ट कोई और कामों में है, वो है यहां लेकिन उनके इंटरेस्ट दूसरी बातों में। लैक ऑफ कमिटमेंट, प्रतिबद्धता नहीं, प्रतिबद्धता नहीं कि हमने क्या कमिट किया, हम किस लिए यहां है, कौन सा काम हमें दिया गया है, उसके प्रति जो प्रतिबद्धता चाहिए वो नहीं। तो अब आप ये बताइए कि ये चाहे जिम्मेवारी की सभानता है, उमंग उत्साह है, प्रतिबद्धता है, सकारात्मक विजन है, मिलके काम करने की क्षमता है, ये सारी योग्यताएं हमें कहां से प्राप्त हो, कहां से प्राप्त, कोई बाजार से तो नहीं मिलेंगी, पैसे से तो नहीं खरीद सकते, ये हमें अपने अंदर से, अपने स्वयं से विकसित कर, अपने आप में से हमें डेवलप कर। इसलिए आज सबसे पहले आवश्यकता है स्वयं को मैनेज करने की, और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने आप के बारे में सही समझ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और वो आपने आज के फर्स्ट लेसन में ही प्राप्त, कि एक है हमारा बाह्य स्वरूप, शारीरिक स्वरूप, सांसारिक स्वरूप जिसको हम जानते हैं, अब तक हमारी बुद्धि में हमारा फिजिकल सेल्फ था, एक्वायर्ड सेल्फ था जो हमने इस दुनिया से प्राप्त किया, हमें नाम भी इस दुनिया से मिले हैं, रिलेशन भी इस दुनिया से मिले हैं, एजुकेशन भी हम यहाँ प्राप्त करते हैं, ऑक्यूपेशन भी यहाँ है, डेजिग्नेशन भी हमें यहाँ से मिलते हैं, सोसाइटी से, कंपनी से, एजुकेशन से। अक्सर आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, उसमें हम क्या बताते, यही बातें बताते थे कि मैं डॉक्टर हूँ, ऑफिसर हूँ, बीकॉम पढ़ा हूँ, इंजीनियर पढ़ा हूँ, इनका बेटा हूँ, मैं मिस्टर फलाना हूँ। हम अपने फिजिकल सेल्फ, एक्वायर्ड सेल्फ को जानते, लेकिन आज आपने अपने रियल सेल्फ को जाना, जो हमारा ओरिजिनल इनेट सेल्फ, वो कौन सा है, वो है हमारा आत्मस्वरूप, चैतन्य स्वरूप, वो है हमारा शक्ति स्वरूप, जो हमारा एक्वायर्ड सेल्फ है, शारीरिक स्वरूप है, सांसारिक स्वरूप है, वो स्थायी नहीं है, वो परिवर्तनशील है, वो विनाशी, वो बदलता रहता है। भाई मैं यंग हूं, 10 साल के बाद मैं नहीं कह सकती। मैं चीफ इंजीनियर हूं, रिटायर्ड होने के बाद नहीं कह सकती। हाँ, ये हमारा बदलता हुआ स्वरूप है, स्थायी स्थिर नहीं, हमारा अविनाशी अचल स्वरूप कौन सा है? आत्मा स्वरूप, जो हमारा मूल स्वरूप। जब चारों ओर हलचल हो तो इंसान क्या करता है? चारों ओर हलचल हो तो आप क्या करें, क्या करें? वहीं बैठे बैठे आप कोई सुरक्षित स्थान पर जाएंगे, तो यहां सब हिल रहा है, अर्थक्वेक हो रही है, तो आप तुरंत भागेंगे बाहर। वो सुरक्षित स्थान ढूंढेंगे, वहां पर जाएंगे। घर में चारों ओर आग लगी हो तो सबसे पहले आप किसको बचाना चाहेंगे? बड़ा जल्दी से कह दिया उस समय बाकी सब दूर, पहले अपने आप को सेफ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम सेफ होंगे तो दूसरे को सेफ कर सके। तो जब संसार को आग लगी है, विषम परिस्थितियां हैं, चारों ओर हलचल की स्थिति है, तो जरूरत है हमें अपने आप को वो अचल स्थिर स्थिति में स्थित करने की। और वो अचल स्थिर स्वरूप कौन सा है? हमारा अपना आत्मस्वरूप। इसलिए यहां मेडिटेशन की पहली प्रैक्टिस कराई जाती है कि जो अपना मूल अविनाशी स्थायी स्वरूप है, उसमें स्थित होने का अभ्यास। अभी हमारी कॉन्शियसनेस उन बातों से जुड़ी है जो स्वयं ही विनाशी है, परिवर्तनशील है, हलचल है। अब देखिए अपने मन को, मन कहाँ लगा हुआ है? उन व्यक्तियों से, उन बातों से, उन पदार्थों से, उन घटनाओं से जो स्वयं ही बदलते। इसलिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद जरूरत है सेल्फ रिफ्लेक्शन की, स्व चिंतन हम उसको कहेंगे, स्वयं को देखना, स्वयं का चिंतन करना। हम पर चिंतन, सांसारिक चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में समय दे रहे हैं। आप अपने चिंतन को चेक करिए, अक्सर कौन से विचार हमें चलते हा? सारा दिन बहुत करके कौन सी बातें आप सोचते? दूसरों की, घर, कारोबार, आसपास, पड़ोस, समाज, संसार, सरकार, वही बातें सोचते हैं ना? और वो चिंतन हम घंटों तक, देखिए आज से पहले आप कभी कहीं भी पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन कैसे करें, उसकी कोई ट्रेनिंग लेने गए? हाँ, उसके लिए कोई शिविर में गए? नहीं, क्योंकि वो तो हम आराम से कर सकते हैं, बल्कि मास्टर है। हाँ, घंटों तक आपस में बैठ के हम तेरी मेरी दुनिया भर की बातें कर सकते, उसमें हमें कभी किसको नींद आती है? देर रात तक आप बातें करते रहेंगे, आपको समय की सीमा का भी ध्यान नहीं रहेगा। और यहाँ 3 मिनट हम स्व चिंतन में बिठाते हैं तो भी लोग सो जाते हैं, कहीं परेशान हो जाते हैं कि कब ये घड़ी देखते हैं। कब ये लाइट वाला लाल से सफेद करे, क्योंकि हमें अपने आप में इंटरेस्ट नहीं, हमें दूसरों में इंटरेस्ट। कौन कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करते, हमें उसमें इंटरेस्ट है। हमें अपने आप में इंटरेस्ट नहीं है कि हम कौन हैं, क्यों हम इस विश्व में आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। हमें अपने आप में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम अपने में स्थित नहीं हो पाते। हमें उस परम कल्याणकारी शक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तो कहते हो कि मन नहीं लगता है। भक्ति करने वाले भी क्या कहते हैं, बहन जी मन भटकता रहता है, क्यों, इंटरेस्ट नहीं है भगवान। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन की आवश्यकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने स्वमान में स्थित रहे, स्व को जाने, स्व चिंतन करें, स्व निरीक्षण करें, स्वमान में स्थित रहे, जो मेरी रियल आइडेंटिटी है, जो मेरा सही परिचय है, उस आत्म स्वमान में मुझे स्थित। हम अभिमान में हैं, हमें अपनी जाति का, कुल का, पोस्ट का, पोजीशन का, बुद्धि का अभिमान है, वो स्वमान में। रियल सेल्फ रिस्पेक्ट हमें और महान, नम्र बना। इसलिए अभिमान और स्वमान के अंतर को समझना। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, अपने को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत। हमारे तीनों कंपोनेंट्स, जैसे बैटरी के कंपोनेंट्स डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो हम कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई। फिर हम उनको केमिकल डाल के उनके कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम कहते हैं बैटरी रिचार्ज। आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसलिए कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, मन पर कंट्रोल नहीं है, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, हमारा अपने आप पर संयम नहीं है। ये क्या निशा दी, डिस्चार्ज आत्मा की निशा दी। हमारा अपना अपने जीवन पर ही कंट्रोल रहे। आप अपने घर में टीवी लाएंगे तो क्या उसका रिमोट कंट्रोल पड़ोस को दे देंगे, हा? कि भाई तुम जो दिखाना चाहो वो दिखाओ, हा? आप क्या चाहेंगे, हर कोई क्या चाहता है घर में, कि मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल, ताकि मैं जो देखना चाहूं वो मैं देख सकूं। और जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, पर किसके हाथ में, दूसरों के हाथ में है, दूसरों के हाथ में चला गया है ना। कुछ हो गया घबरा गए, किसी ने बोल दिया दुखी हो गए, साहब ने फायर कर दिया रिएक्ट करने लगे। आज हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में चला गया, इसलिए कहा रीऑर्गेनाइजेशन। तब सेल्फ मैनेजमेंट होता है, खुद को मैनेज कर सकते हैं। कोई कैसा भी व्यवहार करे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई कुछ भी बोल दे, कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, नया हो जाए, फिर से सीखना पड़े, हम अपने आप को मैनेज कर सकते। और जब खुद को मैनेज करेंगे तो आप खुद एक उदाहरण बन जाएंगे, दूसरों के आगे एग्जाम्पल हो जाएंगे कि ये व्यक्ति है इतनी बात आने पर भी कितना पॉजिटिव है। एग्जाम्पल आप बन जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप एक विशेष सैंपल बन जाएंगे इंप्रूवमेंट के लिए अनेकों के सामने। तो जरूरत है हमें अपने आप को बदलने की, हमारे अंदर सुधार लाने की। हमारी नजर हमेशा गवर्नमेंट बदले, मैनेजमेंट बदले, लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है ना। अक्सर हमारे मन में शिकायतें ही भरी है और दूसरों के तरफ ही हमारी अंगुली रहती। लेकिन अब आवश्यकता है स्वयं को देखने की, स्वयं को बदलने की और स्वयं को उन्नत करने की। तो जब कभी हमारे सामने परिवर्तन की बात आती है तो वो परिवर्तन हमें कहाँ करना है, किस किस लेवल पर करना है। एक परिवर्तन है, मान लो हमें कोई शिक्षा मिलती है, सावधानी मिलती है, हमें कहा जाता है, तो हम अपने बिहेवियरल लेवल पर चेंज करते हैं। मान लो दो व्यक्ति घर में या कार्यक्षेत्र में आपस में टकरा रहे, लड़ रहे हैं, उसको वार्निंग दी जाती है तो वो अपने बिहेवियर लेवल पर चेंज करते हैं। उससे उनके एक्शन में चेंज आता है, उनके कर्म में परिवर्तन आता है। ठीक है, आज से नहीं लड़ेंगे, बोलेंगे नहीं, उनके बिहेवियर में चेंज आता है। लेकिन इससे एक और सूक्ष्म लेवल है, वो है इंटेलेक्चुअल लेवल। उसके बौद्धिक स्तर पर परिवर्तन नहीं आता, लड़ना बंद कर देंगे लेकिन उनकी बौद्धिकता में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में चेंज नहीं। क्योंकि परिवर्तन हमने प्रेशर से किया, ऊपरी किया। आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग में चेंज नहीं है इसलिए हम लड़ेंगे नहीं लेकिन रुठे हुए रहेंगे, कॉपरेशन नहीं देंगे, एक दो को प्यार से नहीं देखेंगे, है ना। क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में चेंज नहीं हुआ। मान लो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में चेंज करते हैं, आपस में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, हम उसमें चेंज करते हैं। लेकिन तीसरा लेवल है जो और सूक्ष्म है और वो है व्यक्ति का इमोशनल लेवल, उनके भावनात्मक स्तर में परिवर्तन नहीं हुआ। समझ भी गया कि भाई इस कारण से हमारा ऐसा होता था और ये बातें हैं जो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी फीलिंग्स में चेंज नहीं आता। समझते हुए भी भावनाएं ऐसी ही बनी रहती। एक दो के लिए जो भावना शुभ और शुद्ध रहनी चाहिए वो नहीं रहती। समझते, जैसे कहते हैं मैं समझता भी हूं लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, फीलिंग्स नहीं चेंज होती। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने कॉन्शियसनेस लेवल से चेंज करें, अपनी सूक्ष्म चेतना के स्तर से स्मृति के लेवल में चेंज। जब तक हमारी एक दो के प्रति हमारी स्मृति यथार्थ नहीं होगी, हमारी अनुभूति, हमारी समझ, हमारे व्यवहार में परमानेंट चेंज नहीं आ सकता। और जब हम अपने कॉन्शियसनेस लेवल से चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे थॉट्स में परिवर्तन आता है, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम इस लेवल पर चेंज लाए। और जिसके बारे में हम अक्सर अपने को कमजोर पाते कि मैं समझती हूं, मैं चाहती भी हूं, लेकिन मैं बदल नहीं सकती, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी आदत ऐसी है, मेरी स्टाइल ऐसी है, इस लेवल पर हम फेल हैं। क्योंकि आज हमें जीवन के अंदर और एस्पेक्ट का नॉलेज और ट्रेनिंग मिलती है। हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम खुद भी सीखते हैं, कंपनीज में भी। देखिए, एक हमारे फिजिकल साइड को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है भी कैसे हेल्दी रहना चाहिए, डाइट क्या लेना चाहिए, एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, हमें फूड कैसा लेना चाहिए, इसके ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं, इसका नॉलेज दिया जाता है। दूसरा है हमारे मेंटल साइड को डेवलप करने के लिए भी हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है, रीडिंग की, लर्निंग की सारी व्यवस्थाएं दी जाती है, ताकि हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर ले और इस प्रकार अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करें। तीसरा है कि हम अपने सोशल इमोशनल साइड को भी हमारा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी, इसलिए कंपनी वाले भी अब क्वालिटी सर्कल्स बनाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, आपस में फैमिली मीटिंग के प्रोग्राम बनते हैं, ताकि हमारी जो इमोशनल साइड है वो भी डेवलप हो। लेकिन जो साइड उपेक्षित है, जिसके विकास के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो है हमारी स्पिरिचुअल साइड, वो है हमारी स्पिरिचुअल साइड, जो हमारी बिलीफ सिस्टम से कनेक्टेड है, हमारी वैल्यू सिस्टम से कनेक्टेड है, जो हमारे पावर्स को डेवलप करती है, अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करती है। वो स्पिरिचुअल साइड के विकास की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसलिए इस विश्वविद्यालय ने इस बात को सोचा, भारत की ही आध्यात्मिकता को लेकर विद्यालय ने इस एकेडमी का विशेष निर्माण किया कि विभिन्न प्रोफेशन में, वर्ग में और जीवन की विभिन्न अवस्था में आध्यात्मिकता की कैसे आवश्यकता है और हम स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के द्वारा अपने वैल्यूज को और इनर पावर्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं और उससे प्रैक्टिकल जो परिवर्तन करना हम चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं और सफलता को पा सकते हैं, उस पर यहाँ वैरायटी कोर्सेस चलते हैं। तो हम इस बात को कंक्लूजन में ले कि अब परिवर्तन की आवश्यकता है, और वो परिवर्तन का क्षेत्र कौन सा? स्पिरिचुअल साइड। लेकिन फील्ड कौन सा? खुद में, हमारे अपने स्वयं में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। दूसरों की तरफ दृष्टि नहीं करे, ये बदले तो मैं अच्छी तरह से काम करूंगा, ये सेटअप ऐसा हो जाए तो मुझे बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा। हाँ, दूसरों की तरफ इशारा और दृष्टि नहीं, लेकिन परिवर्तन का कदम हमें अपने आप से प्रारंभ कर। तो अब हम इस सत्र को यहाँ समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम इस बात को लेंगे कि परिवर्तन करने की जब बात आती है तो क्या होता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। हम 3 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। केवल चुप नहीं रहना है, लेकिन शांत रहकर अंदर ही अंदर स्वयं को देखना है और स्वयं के वास्तविक स्वरूप में स्थित होना है। मैं सजेशंस दूंगी, आप ऐसे ही मन को चिंतन में ले जाएंगे। आसपास के वातावरण से न्यारे हो जाएं, मन को अंतर्मुखी बना ले, स्वयं को देखें, सारा दिन कौन से विचार मुझे आते हैं, चिंतन में मेरा मन लगा रहता है, प्रैक्टिकल जीवन में और कार्य क्षेत्र प्रवी मेरा व्यवहार कैसा है। स्वयं को देखना है, मेरे अपने संस्कार कैसे हैं, अच्छाइयां कौन सी हैं, कौन सी कमजोरियां हैं, मैं अपने अच्छाइयों से ज्यादा व्यवहार करता हूं या बुराइयों के वश ज्यादा एक्टिव हूं। अब तो मुझे अपने सही स्वरूप का ज्ञान है। मैं अपने मूल स्वरूप को जान चुका हूं। मुझे अटेंशन रहे, मैं आत्मा हूं, ईश्वर की प्रतिनिधि बनकर इस विश्व में आई हूं। मुझे अपने मूल स्वधर्म से व्यवहार करना है। मुझे याद है मेरा स्वधर्म है शांति और पवित्रता। मेरे निजी गुण है सुख, आनंद और प्यार। मैं स्वयं एक शक्ति हूं। ओम शांति।